राम ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम
नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। ये पूछते हैं कि नाम जप की तरह सत्संग हर समय किया जा सकता है क्या? तेरे है क्या पशु? पशु तेरे ही है क्या? पशु में बात है उसको उत्तर देता हूँ, किसका है अभी पता नहीं। क्या नाम जप की तरह है सत्संग हर समय किया जा सकता है क्या? नाम जब से ज्यादा हर समय हो सकता है सत्संग, और जिसको आप सत्संग कहते हो वो नाम जब की तरह नहीं किया जा सकता। और मूक सत्संग करने वाले साधक को नाम जब करना चाहिए या नहीं, दोनों साधन करने चाहिए या नहीं? दोनों साधन करना चाहिए, नाम जो छोड़ना नहीं चाहिए। मूक साधन करने वाले को नाम जो छोड़ना नहीं चाहिए कभी। आपसे आप छूट जाए तो दोष नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों साधन कर सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच भाव से कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, और एक एक का सहायक है। नाम जप और मूक सत्संग के लिए, मूक सत्संग नाम जप के लिए सहायक है, बाधक नहीं है, बैर नहीं है इनका। इधर दोनों साधन खूब मौज से करो। एक बात इसमें बताई कि मोक्ष सत्संग में अगर उस नाम छूट जाए तो परवाह नहीं करनी, छोड़ना नहीं कभी।
छूट जाता ही है मोक्ष सत्संग चलेगा तो नाम छूट जाएगा,
और छूट जाए तो वो क्या कर जाए? देखो, छूट जाने में दोष नहीं है, छोड़ने में दोष है। छोड़ने में तो उसकी घृणा होती है, उसका त्याग होता है, दोष होता है। अब छूट जाए तो दोष नहीं है। अब श्वास बाहर निकल जाए, भीतर नहीं रहे तो कोई पाप लगेगा? हम रोक रहे सांस को, रोक रहे हैं, नहीं रुकता तो बाहर निकल जाता है तो कोई पाप लग जाएगा? उल्टी आ गया बाहर निकल जाए तो कोई पाप लगेगा? टट्टी पेशाब निकल जाए तो पाप लगेगा क्या? छूट गया है उसे पाप नहीं लगेगा। छोड़ता है कि उनकी दृष्टि में खराब है कि नीची दृष्टि है तो त्याज्य दृष्टि है, वह दोषी है। ये नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लो भाई। जो प्रश्न पूछा है उस भाई के और मन में हो तो और पूछ लो, और पूछ लो, साफ हो जाए। उत्तर देने में मेरे बहुत प्रसन्नता होती है और उसमें मेरे शंका नहीं है। क्या कह रहे
हैं?
मूक सत्संग में नारायण 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 सबसे पहले मूक सत्संग है। बालक बोलना सीखता है पहले कि मूक रहना पहले सीखता है? बताओ, चुप रहना पहले सीखता है बोलना पहले सीखता है? स्वाभाविक बोलना है कि चुप रहना स्वाभाविक है? ऐसे मूक सत्संग तो स्वाभाविक है, इसमें करना नहीं होता है। जिसका करना है जिसमें करना होता है, इसमें करना होता ही नहीं। मूक सत्संग करने में करना क्या पड़ता है आपको? करना कुछ नहीं। ये बहम होता है कि नाम जब करना चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल फालतू बात है। नाम से कोई संबंध ही नहीं है, और बंद करना मैं कभी कहता ही नहीं हूँ। मैं तो संसार का काम करने को भी बंद करना नहीं कहता हूँ, काम बंद कर दो, गृहस्थी में साधु हो जाओ। ऐसा उपदेश सुना है कभी आपने? गृहस्थी में गंदा क्या करते हो, साधु हो जाओ। तो संसार के काम को भी मैं खराब नहीं समझा, नाम तो वो खराब समझूंगा, आपके जस की तो आप जान सब मेरे से है नहीं, इस वास्ते इसमें कोई कमी नहीं है। संसार काम छोड़ देने से कल्याण हो जाए ये मानता नहीं हूं कि संसार काम छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, साधु हो जाओ कल्याण हो जाएगा, मेरे है ही नहीं बात। छोड़ो तो क्या छोड़ो, क्रिया छोड़ो। जो कल मैंने कहा था क्रिया और एक भाव और एक नियत, कल बताया नियत का 15 आना है और भाव का 3 पैसा है और क्रिया का 1 पैसा है, तो क्या छोड़े? नियत अच्छी रखो भीतर से, नियत अपनी वो उसकी कीमत है, क्रिया की कीमत ज्यादा नहीं है। परंतु भगवान के साथ लगाने वाले क्रिया का संबंध हो जाएगा भगवान के साथ। अग्नि में चाहे ठेकरी रख दो, चाहे कंकर रख दो, और चाहे लकड़ी रख दो, चाहे साफ काला कोयला रख दो, अग्नि में रखते चमक उठेगा। इस तरह से भगवान के साथ संबंध जिसका जोड़ दोगे, नाम जप का जोड़ दो, क्रिया का जोड़ दो, कोई जोड़ दो, वो चमक उठेगी, बात विलक्षण हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी। जहां भगवान के साथ संबंध जुड़ा कि विलक्षणता आई, जैसे पास की छूने से ही लोहे का सोना हो जाए, इससे जो भगवान के साथ संबंध से ही कर्म से ही वो तदर्थी सदित्या विधि से तदर्थीय कर्म का भगवान के लिए होगा, वो कर्म सत हो जाएगा। कर्म सत तो नहीं, कर्म तो आरंभ होता है, अंत होता है, असत होता है, पर तदर्थी होने सत हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध से ही सब ठीक हो जाएगा। ये बात नारायण नारायण नारायण। देखो मोग सत्संग पर प्रकाश डालो, ये जो बात कही, अब उस प्रकाश क्या डालो? एक बात तो मैंने कह दी कि पहले बालक मुंह होता है कि पहले बोलता है। आप हरेक काम करते हो तो पहले मुंह होते हो कि पहले बोलते हो, हरेक क्रिया करते हो पहले निष्क्रिय होते हो कि सक्रिय होते हो, पहले सक्रिय होकर निष्क्रिय होते हो, निष्क्रिय होकर सक्रिय होते हो। निष्क्रियता पहले रहती है, पीछे रहती है, बीच में क्रिया रहती है। ये बात आप विचार करो, जिस भाई बहन के संबंध में नहीं पूछो, कोई काम करो उस काम के पहले आरंभ नहीं हुआ है तब तक बिल्कुल नहीं है, फिर वो काम का आरंभ होता है, काम की समाप्ति होती है, तो काम करने के आरंभ से पहले अक्रिय है और समाप्ति होने पर अक्रिय है। अक्रिय चीज तत्व है, क्रिया तत्व नहीं है, क्रिया नाशवान है, कभी अक्रिया तत्व नहीं होगा, क्रिया सब नाशवान है और तत्व अविनाशी है, और वो सब समय में है। कोई काम आरंभ करो पहले मुख होगा कि पहले क्रिया होगी, बताओ? ये मूल चीज है, ये मुख सत्संग कह दो। सेठ जी कहते थे अचिंत ध्यान, ये परिभाषा है। शरणानंद जी कहते मुख सत्संग, शेर जी कहते थे अचिंत ध्यान, ये शब्द दो है, बात एक है दोनों में, अचिंत का ध्यान। तो अचिंत ध्यान चिंतन नहीं है तो मुंह की हुआ, चिंतन नहीं करने से ठीक होता है, मुंह तो भाई जबान पर लागू होता है, अचिंत चित्त पर लागू होता है। दोनों में अर्थ देखा जाए तो मुंह सत्संग से अचिंत ध्यान ऊंच दर्जे की चीज है। मुख में तो वाणी बंद होती है और अचिंत में चिंतन ही बंद हो जाता है, वाणी बंद हो जाएगी पहले ही, तो वे अत्यंत ध्यान कहते हैं। शेठ जी की पुराने लेखों में, पुरानी चिट्ठियों में अत्यंत ध्यान का वर्णन है। तो अचिंत कुछ भी चिंतन नहीं। कविम पुराणा मनुषा सितारा गणो रणीया मनुष्य मध्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस पद अचिंत्य रूपम। अचिंत रूप है वो, समय समय रूप रमेद बुद्धिया शीघ्र आत्म संस्कृत मन कर किंचित चिंत चिंतन कुछ नहीं करे। मूक नहीं कहा है, मुंह का अर्थ अचिंत है, मुंह का केवल जवान चुप हो जाना नहीं है। अचिंत कहने हैं तो ध्यान कहते हैं, मुख सत्संग कहते हैं ना, उनमें वाणी का नबोलना नहीं है। मुख मुख कोई क्रिया नहीं है, शरीर वाग मनोभर यत कर्म प्राग से न रहा
है। स्थित होना अचिंत ध्यान और मुख एक ही है,
एक ही बिल्कुल है। में स्थित होना एकदम है, में स्थित होना कह दो, मुख सत्संग कह दो, अचिंत ध्यान कह दो, एक तत्व से एक। अलग अलग परिभाषा, कोई कुछ ही कहता है, कोई कुछ ही कहता है, बस एक ही है। तो है में स्थिति स्वतः होना नहीं है, है में स्थिति स्वतः है सो अलग कोई हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है सो अलग हो जाए। स्वतः स्थिति सबकी है में है कि नहीं का संबंध है ये खतरनाक है। नहीं का संबंध ये पतन करने वाला है, तरह तरह गतियां करने वाला नहीं का संबंध है। ऊंच नीच गति होने वाले में नहीं का संबंध है का संबंध से मुक्ति है। बिल्कुल निश्चित एकदम शक्ति सिद्धांत की बात है तत्व नित्य है तत्व है और क्रिया तत्व नहीं है। क्रिया प्रकृति से पैदा होती है प्रकृति रहित तत्व है। बात है तो है परमात्मा परिपूर्ण है। अब जान देना इन्होंने मेरे को हुक्म हुआ है मूक सत्संग का व्याख्यान करो, विवेचन करो, मख्यान पर प्रकाश डालो, तो वो मैं कहता हूँ। अब ध्यान दे आप, कोई भी काम करो आरंभ में उसका अभाव है और फिर उसका अंत में अभाव है। किसी से मिलो पहले अभाव है, फिर मिलना होगा, फिर अंत में अभाव होगा। संयोग होगा पहले वियोग है और फिर वियोग है, बीच में संयोग है। ये बात एक ध्यान देकर समझ लेनी है, ज्यादा दृष्टांत देने की जरूरत नहीं। अब उनमें पहले वियोग है, पहले अक्रिय है, फिर सक्रिय है, इसमें एक बात मार्मिक है। आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा तत्था, मानो आगे आरंभ में नहीं है और अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है, और आरंभ में है और अंत है वो बीच में भी है। ये बात समझ लेना, आदि अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है, और आदि अंत में है वो मध्य में भी है। अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसमें विलाप की बात कौन सी है, पहले अव्यक्त है फिर अव्यक्त है, बीच में अव्यक्त हुआ। जैसे स्वप्न नहीं आया उनसे पहले स्वप्न नहीं है, और नींद खुलने के बाद स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न से एक बीच की अवस्था हुई। स्वप्न कोई नित्य तत्व हुआ और नहीं तत्व है, पहले स्वप्न नहीं है वो तत्व है, जगने जब बाद में नहीं है वो तत्व है, और वो तत्व स्वप्न अवस्था में भी वैसा का वैसा ही है। मानो क्रिया से पहले अक्रिय है और अंत में अक्रिय है, तो क्रिया के समय अक्रिय तत्व वैसा का वैसा है, एक रूप है, फर्क नहीं है उसमें। क्रिया आरंभ नहीं हुई, जिस समय में जो तत्व है वही क्रिया समाप्त होने पर तत्व है, और क्रिया के सबके होते हुए भी अक्रिय बना वैसा का वैसा है, फर्क नहीं है। क्रिया नष्ट हो जाएगी, अक्रिय नष्ट नहीं होगा। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अक्रिय का आरंभ और अंत नहीं होता है। तो मूक संसंग का आरंभ और अंत नहीं होता है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। कितना ही आप काम करो तो भी उसमें अक्रिय है। जैसे दूल्हा होता है, झूला होता है, झूलते हैं, मारवाड़ी में हिंड कहते हैं, हिंड रहे हिंड से हैं, हिंड 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 से है ना, तो हिंड में किधर ही जाओ, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बीच में समता आवेगी, एकदम समावस्था। जहां झूला बंधा है वो झूला, जहां ठहरा है वहां वो सम है, दूसरी सब विषम है। तो क्रिया तो सब विषम है और अक्रिय सम है। यही तेरे जता सर्वो ये सांग साम्य स्थितंग मना। उन लोगों ने इस संसार को जीत लिया जिनकी साम्यावस्था में मन मन साम्यावस्था में स्थित है। क्योंकि निर्दोष नहीं सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका मन समता में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। जिनके मन में समता आ गई तो समता तत्व है, विषमता तत्व नहीं है। विषमता तत्व नहीं, विषमता ठहरेगी नहीं, समता मिटेगी नहीं कभी। जो हम दोला में झूलते हैं तो उसमें ठीक समता पर भी झूला आएगा नहीं आएगा। इधर जाएगा तो इस समता में आकर जाएगा, इधर जाएगा तो इस समता में आकर जाएगा। समता के बिना विषमता टिक नहीं सकती, और बिना विषमता के समता का कोई बाधा नहीं आती। समता में कोई बाधा नहीं आती विषमता से, और विषमता टिक नहीं सकती समता के बिना। एक अक्रिय चीज उसमें क्रिया की जरूरत नहीं है, और क्रिया में अक्रिय की जरूरत है। अक्रिय के बिना क्रिया टिक नहीं सकती। नित्य है अक्रिय तत्व, क्रिया है नित्य तत्व नहीं है। मेरी बातों को याद कर लो, लिख लो, मनन कर लो, फिर शंका पूछो। तो मूक संसंग नाम किसका है? जिसमें कुछ भी चिंतन न करे। जैसे गीता ने लिखा, सनेह सनेह ऊपर अमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धृति गृहीतया बुद्धिया सनेह सनेह ऊपर अमेद। बुद्धि धीरज वाली चाहिए, बुद्धि में धीरज, वह धृति गृहित बुद्धि से सनेह समय उपराम हो जाए। उपराम होना द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, त्याग नहीं है, उपराम होना। उपराम होने में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना है, न करना है, न करना है। उससे बिल्कुल तटस्थ उपरसी। तो उपरती चीज है समय समय ऊपर में बुद्धि रहा। उपराम होकर आत्मसंस्त मन कृत, आत्म जो नित्य निरंतर है उसमें मन लगा कर कुछ भी चिंतन न करे। ये मूक सत्संग का श्लोक है। सनै सनै ऊपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्त मन कृत न किंचित चिंतित, किंचित भी चिंतन न करे, न परमात्मा का, न आत्मा का, न संसार का, किसी का भी किंचित भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। इसमें शेष जी कहते हैं परमात्मा के सिवाय किसी का चिंतन न करे। क्यों? अचिंत समझेगा नहीं और परमात्मा का चिंतन छूट जाएगा, नींद आ जाएगी तो ठीक नहीं है। इस वास्ते कर परमात्मा के सिवाय चिंतन न करे, ये लिखा। तू समझेगा नहीं आदि इस वास्ते, पर चिंतन परमात्मा में करे नहीं। चिंतन किया जाएगा वो अनित्य होगा, चिंतन अनित्य होता है। क्यों? चिंतन आरंभ होता है, चिंतन की समाप्ति होती है। तत्व का आरंभ और अंत नहीं होता, वो नित्य रहता है। तो कुछ भी चिंतन न करे। आगे ख्याल में अब ध्यान देना, इसमें बात बताऊ मैं। जब आप अचिंत्य हो जाओ, कुछ नहीं चिंतन करोगे, तो वृत्तियों का प्रवाह पैदा होगा भीतर में, संकल्प विकल्प पैदा होगा। कुछ याद आवेगी, कोई बात है भूतकाल की आवेगी, कोई भविष्य काल की आवेगी, कोई कुछ करना है, कुछ किया है, इसकी याद आवेगी। याद भी आवेगी, तांता बन जाएगा। तो वो याद आवे, अब ध्यान देना, अब अचिंत ध्यान जो मुख सत्संग है उसकी मार्मिक बात बताऊ। वो जो कुछ भी चिंतन हो उसमें तीन बातें याद रखना। ना तो चिंतन करना है, ना चिंतन हटाना है। चिंतन मिटाना ही नहीं है और चिंतन करना भी नहीं है। दो बात नहीं आई समझ में? चिंतन को हटाना भी करोगे तो उद्योग होगा, क्रिया होगी, और चिंतन करोगे तो क्रिया होगी, हटाना होगा, तो अचिंत ध्यान नहीं होगा, मुख सत्संग नहीं होगी। मुख बने कैसे? हटाने में लग गए, क्या करने में लग गए। तीसरी बात है, उसका हमारे साथ संबंध नहीं है। ये मार्मिक बात है। मानो कुछ भी चिंतन होता है वो चिंतन हट जाए, ये भी भावना नहीं रखना है, और चिंतन ये रहता रहे ये भी भावना नहीं रखना है। तीसरी बात मार्मिक है कि वो चिंतन हमारा नहीं है, चिंतन मन का है, मन अंतःकरण है, स्वरूप नहीं है, करण में होता है। और कर्ण निरपेक्ष साधन कहता हूँ, कर्ण निरपेक्ष तत्व, कर्ण सापेक्ष नहीं है। इस वास्ते उसे तत्वस्थ रहो, उपराम रहो, उपराम शनि शनि ऊपर वेश आत्मसंस मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, न आत्मा का न परमात्मा का न संसार का कुछ भी चिंतन न करें। ऐसी अवस्था में चिंतन पैदा होगा, उसको न अच्छा समझे, न मंदा समझे, न हटावे और न अपना समझे। चारों बात, तीन बात कही मैंने, न अच्छा समझे, न बुरा समझे, न अपना समझे। तो हटावे भी नहीं, मिटावे भी नहीं, चलावे भी नहीं, और अपने ही नहीं समझे, अपने साथ संबंध नहीं है। क्योंकि ये संबंध मन के साथ है, आपके साथ नहीं है। मन है कर्ण, कर्ण के भीतर में है ये चिंतन। कर्ण भी अंतःकरण है, बहिःकरण नहीं है। ज्ञान इंद्रिया कर्ण है, कर्मेंद्रिया भी कर्ण है, परंतु ये बहिःकरण है और वो है अंतःकरण। अंतःकरण तो अंत कर्ण है, कर्ता नहीं है। कर्ण में कुछ भी हो, आपको मतलब क्या हुआ? काम करोगे तो कर्ण बढ़िया से कलम हो तो अच्छा लिखा जाएगा, बढ़िया नहीं तो घटा लिखा जाएगा। पर लिखने में कर्ण काम आएगा, न लिखने में कलम क्या करेगी? बस अपना मिलो, बस ये बात कही ना, ना अच्छा समझो, ना बुरा समझो, ना मिटाओ, और अपने अपने में है ही नहीं, ये पक्का निश्चय समझो। आप तो वो के वो रहते हैं और चिंतन तरह तरह का होता है, तो आप में चिंतन कहाँ है? आप में हरदम चिंतन रहना चाहिए, और चिंतन के साथ आप रहना चाहिए, आपके साथ चिंतन रहना चाहिए। आप तो है जो के जो रहते हैं, चिंतन आता है, मिटता है, आता है, जाता है, तो आपके साथ कहाँ है? आप मिलो बस, मुख सत्संग सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें समझ में नहीं आया तो पूछो।
जैसे नाम जब सोते फिरते उठते बैठते हर समय किया जाता है,
अखंड किया जा सकता
है, ऐसे मुख सत्संग भी किया जा सकता है
क्या? अखंड होता है मुख सत्संग तो अखंड है, खंड होता ही नहीं है समय।
तो इन दोनों साधनों में श्रेष्ठ साधन कौन सा?
दोनों साधन नहीं है, साधन तो अखंड है वही है। साधन नाम जब करते हैं उसको तरह से करते रहो, नाम जब करते रहो और है परमात्मा सब जगह, उस नाम के साथ में है मनो राम 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 मानो है राम के साथ में है को लगा दो, दोनों एक साधन हो गया।
सत्संग से परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं, मुख सत्संग से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं।
अगर दर्शन की इच्छा दर्शन हो जाते हैं, समाधि की इच्छा समाधि हो जाती है, तत्व ज्ञान की इच्छा तत्व ज्ञान हो जाती है, जो चाहो सो हो जाएगा। उसमें सब खजाना है, सबका खजाना है, आपका उद्देश्य होगा वो हो जाएगा।
खूब समझ में आ गया,
आ गया, अब छोड़ना मत। नारायण 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 नारायण, बात बख में आ जाए क्यों छोड़े, ठीक है नहीं? मारवाड़ी शब्द है, बख में आ जाए क्यों छोड़े, बखरा को जन क्या करे बेचारा, समझ में आ गई ना बख में आ गई। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण।